السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک صاحب ملے، بہت سالوں پرانی بات ہے، کہنے لگے کہ ہماری زبان بھی جانگلی ہے اور ہمارے بڑے بھی جانگلی تھے، اور جانگلی ایسی زندگی گزار رہے تھے، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ. اور کہا سنا ہے ہمارے بڑوں میں جو ان کا پیشہ تھا، بس وہ چوری ہی تھا. یہ صاحب بہت سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، دنیا کا بہت بڑا ٹچ ان کے ساتھ ساتھ روحانیت کا ٹچ بھی. مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رکاوٹ تھی، ہرڈلز، بیریئرز، راستے بند، رکاوٹیں، مشکلات، وسائل، مقدمات، حادثات، کچھ قتل بھی ہوئے، پھر اس کی عدالتیں، پھر جیلیں، اور زندگی ایسی تنگ تھی. مالداری بھی تھی، عہدہ بھی تھا، پر جیسے کہتے ہیں نا، کسی نے چین اور سکون لوٹ لیا ہے، کسی نے جادو بتایا، کسی نے جنات بتایا، کسی نے نظر بد بتائی، کسی نے کالا جادو بتایا، کسی نے جو بتایا سو کیا. لیکن کچھ حالات کے سدھار اور حالات کا سنورنا نظر نہ آیا، اور ایک احساس ہوا کہ زندگی، پتہ چلا کہ میرے والد بھی ایسی زندگی گزار کے گئے تھے. میں چھوٹا ہی تھا، والد فوت ہو گئے، دیکھا تو تھا لیکن زندگی کا پتہ نہیں. اور پتہ چلا کہ دادا بھی ایسی زندگی گزار کے گئے تھے، انہی مشکلات کے ساتھ، بظاہر علاقے کے بڑے چودھری، بظاہر علاقے کے بڑے ڈیرہ داری اور رزق اور آنا جانا اور عزت، اور زندگی میں چین نام کی چیز نہیں ہے. لیے یہ دفعہ ہمارے نا ڈیرے پہ کوئی درویش آئے، مہمان آتے تھے چلے جاتے تھے، کوئی درویش آئے، اور وہ آئے تو میں نے انہیں کھانا کھلایا جیسے کھانا کھلاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوئی بات، مجھے کوئی کشش ہوئی، مہمانوں کا آنا جانا تو لگا رہتا تھا، میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا. ایسی بے ساختہ مجھ سے کہنے لگے کہ زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، خوشحالیاں نہیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور مسائل ہیں، اور الجھنے ہیں، ہے یہی کچھ؟ ہاں. اور کہا تمہارا باپ بھی اسی میں حالات میں گزر گیا، تمہارا دادا بھی، تمہارے بڑے بھی، اس کا حل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے کا میں نے سوچا کہ یہ بھی وہی حل بتائیں گے جو آج تک داستانی کہانیاں سنی ہیں، کسی نے تیرے پر جادو ہی کر دیا ہے. میں نے ایسی لاپرواہی سے کہا، جی بہت کچھ کیا نہیں ہوگا. کہا کہ آج میں وہ بتا رہا ہوں تو نے کہیں سے سنا نہیں ہوگا، ذرا غور سے سن. اور جلال میں آ گئے میری بے اتنائی اور بے توجہی کو دیکھ کر. ان کے جلال کو میں نے دیکھا تو میں سہم گیا کہ کوئی درویش ہے، با کمال درویش. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بڑے کیا کرتے تھے اور ان کا مکافات تیرے ساتھ چل رہا ہے. میں ان کی بات پہ چونک پڑا، مجھے تو پتا تھا میرے بڑے کیا کرتے تھے. کہا کہ ان کی بد دعائیں جو ان کے ساتھ تھیں، کسی کو لوٹا، کسی کو مارا، کسی کو پریشان کیا، کسی مسافر کو جاتے جاتے اس سے لوٹ لیا، اس کی آئیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں، वो बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो लानतें तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो दिल के अंदर के फफोले और उनकी आग और वो धुआं और वो शोले, वो तुम्हारी हर चीज को जला रहे हैं। वो बातें कर रहा था और मैं कांप रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। और तुझे पता है कि तेरे बड़ों ने जो कुछ किया था वो नस्लों में चल रहा है, और तुझे पता है कि तेरी नस्लों में अल्लाह ने जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, खैर, बरकत छीन ली है। बर्बादी, परेशानी, नाकामियां, मुश्किलात और जिंदगी की हर बर्बादी परेशानी तुम्हारे साथ है, तुमने इसका आज तक हल ही नहीं किया। तुम जादू पे लगे हुए हो, क्या हर चीज जादू होती है? क्या हर काम जो भी समझना है वो जिन्नात को उसका लेबल लगा दिया जाता है और उनके उनके जिम्मे लगा दिया जाता है? कभी इसका हल भी सोचा कि तुम्हारे तुम्हारी नस्लों में वो बद्दुआएं, वो मकाफात चल रहा है, और कभी उसको बख्शवाने की और उसके हल कराने की तुमने कोशिश की? कहते वो कह रहे थे और उनकी हर बात मेरे ऊपर ऐसी हथौड़ी की तरह दिमाग पे लग रहे थे। मैं अपने डेरे का चौधरी था, मैं फैल के बैठा हुआ था, मैं सिकुड़ गया, मैं सहम गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बेकदरी, इस दरवेश की है, बेअदबी की है, इसकी वो कदर नहीं कर सका जिस कदर का ये दरवेश मुस्तहिक था। ये तो बड़ी दूर की नजर रखता है, मैं तो इसको जाहिर में पहचाना, ये तो बड़ी गहरी नजर रखता है, ये रूहानियत की लाहूती और मलाकूती और जबरूती और पूरा सरार दुनिया का मालिक है, इसने अपने आप को जहर नहीं किया। कौन फिर दुनिया गरीबन, पर मैं ये विलायत की निशानियों में से निशानी है, याद रखना कि ऐसे रहो तुम्हें कोई पहचान ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई शोबदाबाज कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई औलिया में से कहे, कोई कहे ऐसे बाजारी सा आदमी है। कौन फिर दुनिया गरीब, ऐसे दुनिया में रहो तुम्हें कोई पहचान ना सके, ये विलायत की निशानियों में से पहली निशानी। और वली अपनी विलायत को हमेशा छुपाता है, और भांपने वाले भांप भी जाते हैं, देखने वाले देख भी जाते हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं, स्मेल करने वाले स्मेल कर जाते हैं। मैं सहम गया, मुझे महसूस हो रहा था कि वो तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, और वैसी गहरी बातें कर रहे हैं जिनका आज तक ना मेरे बाप ने तذکرہ किया, ना मैंने तذکرہ किया, ना घर में तذکرہ हुआ। हाँ, ये तذکرہ होता था कि हमारे बड़े थे, बस उनकी जिंदगी ऐसी थी, हमारी जुबान भी जंगली है, हमारी कौमें भी और हमारी नस्लें भी, हम जंगल की जिंदगी गुजारते थे, या सारा जंगल था, फिर इसमें से अंग्रेज ने रेलवे लाइन निकाली थी तो हमारे बड़ों ने उससे बड़ी मुकाबला किया था। ये क्या तुम हमारे गले में लोहे का तौक डाल रहे हो रेलवे लाइन के जरिए? फिर वो कहानियाँ सुनते थे कि कभी जो है हमारा जानवर कोई बांध के ले जाता था, कभी हम किसी के जानवर, किसी के बैल, किसी के ऊंट, किसी की बकरियां, किसी के जेवर, इसी तरह कहानियां सुनते सुनाते रहे थे खानदान के बड़ों से। पर वो सुन के बाज़ औक़ात हंस पड़ते थे, और फिर बाज़ औक़ात हमें अपने बड़ों की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती थी। एक काफिला, ये रास्ता था, काफिला जा रहा था, एक बंदे ने सारे काफले को पकड़ दिया, कई को मार दिया, माल लूट लिया, बड़े मुकाबले में आए, और हम बड़े जीदार हैं, हम बहादुरों की औलाद में से हैं, हम बड़े शजात में हैं, हम तो उसको बहादुरी समझते रहे। वो तो हमारी नाकामी का बाब निकला, ओहो। ज़िमनन एक वाक्य और याद आया, मैं मरी से आ रहा था रूहानी मंजिल से, तो मरी रूहानी मंजिल से आ रहा था, तो रास्ते में एक साहब का इसरार था हमारे यहां रुके, मैं उनके यहाँ रुका तो मुझसे कहने लगे कि गरीब आदमी थे और मेरी भी चाहत थी मैं उस गरीब के घर रुकूं। ढूंढते ढांढते गाड़ी अंदर छोटी गली में ना जा सकी, एक साइड पे हमने गाड़ी खड़ी की, गए वहां। उसने कोई दाल साग रोटी पकाई हुई थी। मैंने उससे कहा भी तेरे घर खाना खाएंगे। जाते हुए मैं उसकी कुछ खिदमत करके उठा। मुझे कहने लगा कि क्या हमारी नस्लें ऐसी गुर्बत में रहेंगी, तंगदस्ती में रहेंगी, और हमारी नस्लें इसी गुर्बत और तंगदस्ती में ऐसे ही चली जाएंगी। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, कश्फ वगैरह तो मुझे होता नहीं, गैब का इलम तो अल्लाह ही जाने। मैंने कहा तेरा बाप मशकूक रिस्क कमाता रहा और उस मशकूक रिस्क कभी जिंदगी में सुकून नहीं, बरकत नहीं आएगी। एक कसरत है, कुत्ती कितने बच्चे देती है, एक बरकत है, बकरी कितने बच्चे देती है। कभी कुत्ती के रेवड़ नहीं देखे, हमेशा बकरियों के रेवड़ देखे। कसरत और बरकत में फर्क है। उससे कहने लगा जी बिल्कुल ठीक है, मेरे वालिद जो है ना फलां बड़े थे, एमएलए, उस दौर में एमएनए नहीं होते थे, एमएलए होते थे, एमएलए उसके जो है वो मुंशी होते थे और उनकी बड़ी जागीरें थीं, बड़ा माल था फला। मैं नाम इलाके का नाम नहीं लेता, मुझ जो है जगह का नाम नहीं लेता। तो वो बस लिखते क्या थे, होता क्या था। घर में हमारे बहुत रेल पेल होती थी, चीज़ें माल जानवर आ रहे हैं, और एमएलए के मुंशी होते थे, उनको हर चीज़ ओके दिखाते थे और दरमियान में कुछ चीज़ें खाते थे बहुत ज़्यादा, हत्ता के इतना दोस्तों को तोहफे मिलते थे। ये होता था, होता था। हाँ, बाप ही की जिंदगी में जब तक वो एमएलए जिंदा रहा कुछ नहीं हुआ, बस यूं वो मरा और बाप की जिंदगी में जवाल आया, और ऐसा जवाल आया, ऐसा जवाल आया। आज कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो साफ कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरी औलादे जवान है, बहू बेटियां बहुत, वो मेरे बेटों के बाल सफेद हो रहे हैं। गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारी, तकलीफ, मुश्किल मसाइल, उलझने, नाकामियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब मैंने उसे कहा ना कि मेरा विजदान कहता है, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, मुझसे भूल हो सकती है, ना मैंने किसी चीज का दावा किया है, तो फौरन फिर उसे अपनी हिस्ट्री याद आई। मैंने कहा तेरी गुर्बत, तेरी सफेद पोशी, तेरी तंगदस्ती कभी नहीं जा सकती जब तक इसका इजाला हो। याद रखना, हकूकुल्लाह के लिए तौबा है, हकूकुल इबाद के लिए तौबा नहीं है, इजाला है। फिर सुन लेना, हकूकुल्लाह के लिए तौबा है, हकूकुल इबाद के लिए तौबा नहीं है, इजाला है, माफी है, फिर तौबा है। मैं सोया हुआ था, वो जांगली का वाकया याद रखिएगा, मैं उस वाकये की तरफ आता हूँ। मैं सोया हुआ था, एक साहब ने आके ना मुझे पांव से उठाया। हकीम साहब तहज्जुद का वक्त जा रहा, गर्मियां थी, रात को देर से सोया था, मस्जिद की खिदमत करते करते तो मस्जिद में ही सो गया। वैसे ऐसे हनूदगी में उठा तो जवानी की नींद थी, खुमार भी था नींद में। देखा तो जो उठाने वाला था, मुझे शर्म आया, मशहूर डाकू और चोर था, और उसकी जिंदगी में कहने लगे 3 जिलों की पुलिस, 2 जिलों की पुलिस एक दफा इकट्ठी हुई मुझे पकड़ने के लिए, मेरे गांव और दूसरे गांव को घेरा दिया। 3 दिन तक पुलिस मुझे तलाश करती रही, खजूर के एक झुंड में कांटों में 3 दिन बैठा रहा, थक हार के चले गए, मुझे ना पकड़ सके। आज तक पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकी, और मेरी चोरी, मेरा डाका लाजवाब, फिंगरप्रिंट मैं नहीं छोड़ता, निशान मैं नहीं छोड़ता। पर जब जिंदगी ने तौबा, और तौबा की जिंदगी आई, मेरे मन में थी बड़ी लज्जतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। फिर एक एक बंदे के घर गया और जाके तौबा करवाई, और रिवॉल्वर लेके गया, मुझे गोली मार दो, माफ कर दो वरना मैं दूंगा। अक्सरियत ने माफ कर दी। तो मैंने कहा तेरे घर में बरकतें, तू कहे मेरे घर में पीर आ जाए और मेरे घर में पीर आके दुआएं मांग ले, वो जो हकूक खाए हैं, मैं वो पीर नहीं हूं जो तुझे कहानियां सुनाऊं। मेरे साथ पीर का एक छोटा सा लेबल है, लेकिन कोशिश करता हूं, दावा नहीं कि मैं वो पीर नहीं हूं जो तुझे कहानियां सुनाऊं। जहां से आया पीर को राजी करके भेज, खिला भी सही साथ कुछ दे भी सही। मैं तो उसे कुछ खुद दे के आया और उसके बाद उसने जिंदगी बदली और एक एक बंदे का इजाला किया। जिस बाप ने जिन जिन लोगों को ढूंढा, तलाश किया और पूछा, और मैं कहता हूं वो खोजी बन गया, और खोजी ऐसा बना के उसने आज वो तवंगरी में खुशहाली में। मुझे कहते हैं अब आए, मैं कह आऊंगा, अब तेरी तवंगरी पे जरूर आऊंगा और खुश भी होऊंगा, वक्त नहीं मिलता। कई साल पुरानी बात, चांगली कहने लगा, वो दुर्वेश जो मेरे डेरे पे आए बैठे थे, मैं वापस अपनी जिंदगी पे चला गया हूं उस कहानी पे। उसने तो मेरे दिमाग पे हथौड़े मारे, कहा कि वो बददुआएं, वो आहें, वो बेबरकतियां, वो जो तेरे पुराने तेरे बड़ों के गुनाह हैं, छीना झपटी है, चोरी डाकू धोखा है, फरेब है, लुट लुटा है, वो आहें, वो बददुआएं, वो बेबरकतियां, वो जो रिस्क तुम्हारी घरों में आया, वो तुम्हारी नस्लों का सब कुछ छीन के ले गया है, उसका इजाला कर। अब मैं परेशान क्या करूं, करने वाले मर गए, चोर मर गए, चोरियों किए वाले मर गए, कातिल मर गए, मकतूल मर गए, अफसर मर गए, मैं क्या करूं, अब क्या करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, कहा कि दो चीजें हैं, इसका इजाला भी बताऊंगा, अपने माल का कुछ हिस्सा निकाल और रिस्क के हलाल निकाल, और जितना निकाल सके थोड़ा से थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा, वो सदका कर किसी ऐसे जरूरतमंद को जो सवाल ना करता हो, गली गली ना फिरता हो, बाजार दुकान दुकान ना फिरता हो, सदका कर। एक दूसरा, रोजाना उनको पढ़ के बख्श और उनके लिए इस्तिगफार कर। ए मौला, जिन लोगों से मेरे बाप दादा से कहीं गलती हुई, ठीक है मेरे बाप दादा डाकू नहीं थे, चोर नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे, क्या पता उनसे किसी की शान में ज्यादती हुई, किसी वली को दुख पहुंचाया, किसी दुर्वेश को तकलीफ पहुंचाई, ए अल्लाह मेरे बाप दादा या मेरी जात से, खुद मेरी जात से किसी का माल, किसी की जान, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, और यहां तक कि किसी जानवर को मैंने तकलीफ पहुंचाई और उस जानवर की आह निकली, हाय। अदालत में केस सामने है, जज 300 दे में उसने, जज ने इसको फांसी का हुक्म देना है कि बस इसको फांसी चढ़ा दो, और वो कहता है मैं बेगुनाह हूं, और गवाहियां सख्त हैं, और जज मजबूर है कि आप इसको बरी कर दे। उसने अगले दिन की पेशी दी, जब अगले दिन की पेशी दी, अगले दिन रात को ख्वाब आया, और ख्वाब में देखा कि एक जख्मी गदी है, खून खार चेहरा खोला हुआ है, कहते ख्याल करना अगर इसको तूने बरी कर दिया तुझे खा जाऊंगी, बर्बाद कर दूंगी। खौफनाक ख्वाब था, जज उठ के बैठ गया पसीना पसीना, खौफनाक हालत में, समझ नहीं आ रही थी, जहन चला उस केस की तरफ गया जिस केस को आज मैंने सुनना है, उस केस का इंतजार है अब जज को। जब वो आया, उससे पूछा ठीक है तूने ये गुनाह नहीं किया, कोई और गुनाह ऐसा बता। उसने कहा नहीं है, किसी को जख्मी किया हो, नहीं, किसी को कत्ल किया हो, नहीं, कहा कोई गधी को तूने जख्मी किया, हाँ, एक गधी थी हमारे घास में घुसाती थी, छोड़ देते थे, मैंने एक दफा रोका फिर रोका, दराती से पकड़ के उसकी खाल पकड़ के मैंने दराती से ऐसे खींची, उसकी दाल खाल को उधेड़ी और पकड़ के उसकी खाल को उधेड़ दिया, और वह चीखती हुई भागी। कहा वो गधी अगर मैंने तुझे फांसी पे न चढ़ाए मुझे खा जाएगी, ले इसको तख्तेदार पे चढ़ा दो, जाओ इसको फांसी दे। जज ने कहा हमें खबर नहीं हमारे पीछे किसी की बददुआएं, हमारी नस्लों में किसी की बददुआएं, किसी बेजुबान की या जुबान वाले की, किसी मजलूम की, किसी मकहूर की, किसी मजबूर की। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफरत का, और तीसरा अशरा जहन्नुम से खुलासी का, ये मगफरत का अशरा 17 रमजान यौम बदर मगफरत का अशरा। इसमें हमें फिक्र करना है, फिक्र करना है, फिक्र करना। मेरे पास 7-8 नस्लों की पुश्तों तक का पूरा निजाम है, नामों के साथ, फिर अगला शिजरा है, नामों के साथ फिर अगला है शिजरा है। मेरे शिजरे में मुझे आज तक कोई डाकू, फरेबी, धोखेबाज वगैरह वगैरह नहीं मिला, लेकिन हर साल में एक बड़ी मिकदार रकम की सिर्फ इसलिए निकालता हूं कि माना क्या पता कहीं से मेरी जात से कोताही, मेरी वालिद से, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके वालिद, उनके वालिद। मेरे शिजरे में दुरेशी फकीरी आ रही है, लेकिन मुझे फिर भी एहसास है कोई, मैं हर साल एक रकम निकाल देता हूं और हर दुआ में। ये जो मैंने रमजान में वजीफा बताया, अल्लाहुम्म अग़फिर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये इन्हीं चीजों का इजाला है। मौला कोई ऐसा बंदा था, मोमिन था, मोमिनात था, मुस्लिम था, मुस्लिमात था, मैं जिसके साथ ज्यादती करके भूल गया, मेरा बड़ा भूल गया, उसका बड़ा भूल गया, उसका बड़ा भूल गया, भूल गए, मर गए, लेकिन उसकी आह मेरा ताकुब कर रही, उसकी बददुआ मेरा ताकुब कर रही, उसकी लानत मेरा ताकुब कर रही, और मेरी नस्लों का ताकुब कर रही, कर रही, कर रही, नस्ल दर नस्ल। चलो आपने सुना नहीं होगा इस खानदान को किसी की दुआ है, ऐसे आम हमारे माशरे में बात है, आपने सुना होगा इस खानदान को किसी की बददुआ है। ये क्या है, ये सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं, हकायक है, ये सच है, ये अनमेंट नकुश है। रमजान की इन घड़ियों में अपने उन नस्लों के लिए मनवाना है, मौला क्यों बद दुआएं, बद दुआएं, कभी लुकमा नहीं छीनती, सजदे छीन लेती है। बद दुआएं, मेरी ये लफ्ज खुद सुनना जरा गौर से और दिल के आंखें खोल के सुनना, बद दुआएं कभी लुकमे नहीं छीनती, सजदे छीन लेती है। एक सहाबी ने एक जालिम को बद्दुआ दी थी, जा तुझे अल्लाह फितनों में मुबतला कर दे, फितनों में मुबतला कर दे, उससे हया छिन गया था और वो खुले आम बुराइयां करता था। तीन बद्दुआएं दी थी, तेरी उम्र लंबी हो जाए एक बद्दुआ, तेरा तुझे फितने में मुबतला हो जाए, और दूसरा तेरा फक्र लंबा हो, बड़ा हो जाए। मांगता था, पूरी नहीं होती थी, उम्र लंबी थी, आंखें ढलक गई थी, और बुढ़ापे की आखिरी हालत में खुलेआम बेहयाई, और लोग कहते थे क्या करता है, कहा मुझे उस सहाबी की बद्दुआ खा गई। इस तरफ तवज्जो नहीं की, ये मैं आपको तवंगरी का पैकेज दे रहा हूं, ये मैं आपको नस्लों में मालदारी का पैकेज दे रहा हूं, ये मैं आपकी नस्लों में माल, दौलत, इज्जत चाहता हूं रहे। आज जागीरदार हैं, आज मालदार हैं, आज खुशहाली का रुकम है, आज रिस्क वुस्सत का है, तो ये मैं आपकी नस्लों के लिए वुस्सत और लुकमे बचाने का गुर दे रहा हूं। सेविंग, सेविंग क्यों कहती जी, मेरी इतनी सेविंग है, मैंने इतनी सेविंग की हुई है, इतनी मेरी बचत है, ये सेविंग है। वरना देखा कई आए बड़े बड़े मालदार जागीरदार, 14-1400 मुरब्बे जमीन, 18-1800 मुरब्बे जमीन, इतने के जिनके हाँ 3-3 दिन घोड़ियां दौड़ती रहें और फिर अगले 3 दिन उनका रकबा खत्म ना हो। आज वो सड़कों पे, गलियों पे मंगते मांगते फिर रहे हैं। ये नस्लों के लिए रिस्क बचाना, वरना वो आहें खा जाती है। पिछला कोई आया था मेरे खानदान में, मुझे पता नहीं, मैंने अपनी जवानी में, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने बुढ़ापे में किसी का दिल तोड़ दिया था, किसी का दिल जला दिया था, किसी बेजुबान को तकलीफ दी थी, किसी को जुल्म किया, किसी के साथ ज्यादती की, किसी की आह निकली और अर्शों को उसने जाके हिलाया और अर्श में हलचल मची और फरमाया ठीक ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए दे दो उरूज, फिर हम इसको जो जवाल और इसकी नस्लों को जो जवाल देंगे, जमाना इबरत से देखेगा। व शमातत अल आदा, قرآن حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے، مولا مجھے اس حال سے بچانا کہ دشمن تالیاں بجائیں اور دشمن ہنسیں، وشماتت الاعداء، میں نے اس کو عبرت بنانا ہے، کوئی بات نہیں، نہ مولا ابھی سے معافی، ابھی سے توبہ، ان کے لیے استغفار، نفلی اذکار، دعائیں، تسبیحات، ان کو ہدیہ غائبانہ، پتہ ہے یا نہیں، ان کے لیے کوئی مال کا ہدیہ، ان کے لیے کچھ اعمال کا ہدیہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میرے پاس اس کے تجربات ہیں، کوئی سخت مجاہدہ اور قربانی کر کے، خدمت کر کے، خدمت کر کے، ایک صاحب کو میں نے کہا کوئی سخت مجاہدہ قربانی کر، خدمت کر، اور ان متاثرین، وہ متاثرین، زلزلہ زدگان کے متاثرین ہوتے ہیں، سیلاب زدگان کے متاثرین ہوتے ہیں، نسلوں کے متاثرین، کسی کا جان، کسی کی مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کوئی بے زبان، کوئی زبان والا، وہ متاثرین، میں نے کہا ان متاثرین کو پہنچا جانی مشقت بھی اور مالی مشقت بھی۔ ایک جگہ ایک مسجد بن رہی تھی، سب روزے کے ساتھ کہنے لگا، میں نے مسجد کی پورے کے پورے 22 دن خدمت کی، یا 27 دن کہا یا 22 دن کہا، اور کہا میں نے روز کہتا تھا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، میرا جس سب کچھ ٹوٹ گیا ہے، یہ میں اپنا جانی خدمت اپنی ان متاثرین کو دے رہا ہوں، حالات بدل دے، حالات بدل دے، اور کہا جو وظیفے تسبیحاں، جو اعمال کرتا تھا ان کو دیتا تھا، اور جو کچھ پیسے تھے وہ بھی دیتا تھا، کئی سال میں نے ایسے کیے، اور پھر اللہ نے حالات بدلے، معافیاں دے دیتا ہے، کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، تو رجوع پہ آ گیا ہے نا، ان کے سارے بقائے جات تیری طرف سے میں ادا کر دیتا ہوں، ان کی طرف سے سارے بقایا جات تیری طرف سے میں ادا کر دیتا ہوں، تو رجوع پہ آ گیا ہے، ہمیں یہی رجوع چاہیے، تیرا آنا چاہیے، آ گیا ہے، لوٹ آیا، ٹھیک، ہم بقایا جات ادا کر دیتے ہیں، جا۔ کریم جو ہوا، سخی جو ہوا، شہنشاہ لجپال لکھپال جو ہوا، غریب نواز جو ہوا، بندہ نواز جو ہوا، اس کو سوچنا ہے، بہت گہری بات ہے، اور بہت گہری بات ہے، میری زندگی کے پچھلے سال دکھ اور غم کی کہانیاں سنتے 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 گزرے ہیں، اور یہ میں اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کا، 30 سالوں کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں، کہ بعض اوقات انسان اس کو جادو سمجھتا ہے، حسد سمجھتا ہے، کسی دشمن کی دشمنی سمجھتا ہے، کسی کی میرے ساتھ دغا بازی سمجھتا ہے، نہ وہ دشمنی ہوتی ہے، نہ دغا بازی ہوتی ہے، بظاہر وہ نقشہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے ایک بہت بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ اس پہ توجہ نہیں ہوتی، تو اس کا مالی ازالہ بھی کرنا ہے، اس کا اعمالی ازالہ بھی کرنا ہے، اعمال کا ہدیہ بھی دینا ہے، کیوں قیامت کے دن بھی آقا کا فرمان ہے ایک شخص جائے گا، بس آخری بات سنیں اور آپ کے کام کی بات ہے، اللہ کے ہاں پہاڑ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی، حقدار آ جائیں گے، حقداروں کو نیکیاں ملتے ملتے ملتے، اب نیکیاں ختم، حقدار باقی، اب ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، جب قیامت کے دن نیکیوں سے چھٹکارا ہوگا، ابھی سے نیکیاں دینے شروع کر دیں، یا اللہ یہ کلمے کی تسبیح پڑھی، قل ھو اللہ کی تسبیح پڑھی، اشراق تاشت اوابین کے نفل پڑھے، فرض نہیں دے سکتے، نوافل سارے دے سکتے، اللہ یہ تسبیح، یہ اعمال، یہ صدقہ، یہ روٹی کسی غریب کو کھلائی تھی، یہ مال دیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ میں ان کو دے دے، جو متاثرین ہیں مجھے خبر نہیں ہیں، تو ان کو دے دے، ان کو عطا فرما دے، اور مجھے خلاصی دے دے، تیری رحمت ہوگی۔ چھوٹا سا نقطہ ہے، گہرائی سے لے لیجئے گا، بڑا کام بن جائے گا، بہت مسائل حل ہو جائیں گے، اور زندگی کی بہت الجھنیں دور ہو جائیں گے۔ نسلوں کے لیے اگر رزق، دولت، عزت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور خون ریزیاں نہیں چاہتے اور عافیتیں، تو پھر یہ عمل ضرور کیجئے گا، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا، اور اس کو قدردانی سے لیجئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر الله العظيم، ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انت نستغفرك واتوب اليك، انت نستغفرك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. امين امين برحمتك.